भक्त एक सेकंड के लिए भी कभी दुखी नहीं होता, भक्त एक क्षण के लिए भी कभी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है अपने परम मित्र और सबके परम मित्र एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण। उन पर दृढ़ अटल विश्वास, उनकी वाणी पर दृढ़ अटल विश्वास होता है। इसी एकमात्र कारण से वह कभी भी दुखी नहीं होता एक क्षण के लिए। वह जानता है कि संसार के रचयिता स्वयं प्रभु हैं और इस देह के रचयिता भी प्रभु हैं और हमारे यहां पे संसार में आने का कारण भी प्रभु हैं और प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु हम सबके मित्र हैं, सुहृद सर्वभूतानां, सबके सुहृद हैं। सुहृद मतलब परम मित्र, परम हितेशी, हित चाहने वाले व्यक्ति को सुहृद कहते हैं। वो हमारा हित चाहते हैं और इसी कारण से उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा इस सृष्टि के रचयिता ने स्वयं बताया है कि किस प्रकार से तुम्हारा हित हो सकता है। तो भक्त का तो मतलब ही यही है कि वह भगवान की बात मानता है। प्रभु ने इस संसार के विषय में क्या कहा है? प्रभु कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। प्रभु इस संसार को क्या बता रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है। आलय मतलब घर, स्थान, निवास स्थान, जहां पे एक स्थान निवास का आलय। जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तकें ही पुस्तकें केवल। अनाथालय में क्या होता है? अनाथ ही अनाथ। छात्रालय में क्या होता है? छात्र ही छात्र। हिमालय में बर्फ ही बर्फ। उसी प्रकार से यह है, क्या है संसार? दुखालय। यहां क्या है? केवल दुख ही दुख। पुस्तकालय में अगर आप जाएं लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, और बोलें 500 ग्राम धनिया दे दो, तो क्या बोलेंगे? भाई यहां केवल पुस्तकें हैं। बोले 500 में 50 ग्राम ही दे दो, 50 ग्राम छोड़ें या 1 ग्राम भी धनिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पुस्तकालय है। उसी प्रकार से हिमालय पे जाएं हम और वहां पे हम कामना करें, या मान लो आपकी भाषा में बोलें, एप्पल फोन के शोरूम में जाएं और उनको बोलें कि भाई 1 दर्जन संतरे दे दो, तो वो बोलेंगे भाई ये संतरे का स्थान नहीं है। बोले एप्पल है तो संतरे भी होंगे, तो नहीं, ये वो एप्पल नहीं है और यहाँ पे ये संतरे नहीं मिलते। तो जब एक एप्पल के शोरूम में संतरे नहीं मिलते, पुस्तकालय में धनिया नहीं मिलता, तो दुखालय में सुख कैसे मिल सकता? प्रभु हमारा हित चाहते हैं, खोल के बता रहे हैं सारी गप्पा। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम एक क्षण भी बिना प्रचुर सुख के नहीं रह सकते। हमें हर क्षण क्या चाहिए? प्रचुर मात्रा में सुख, और तो कुछ नहीं। एक क्षण हम रह नहीं सकते, और जहां पे हैं वो तो रचयिता है ना प्रभु संसार के, वो स्वयं बता रहे हैं कि ये यहां पे सुख तो छोड़ो, सुख की गंध भी नहीं है। ये बताया है 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, भगवान की श्रीवाणी है ये, दुखालय अशाश्वतम। 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्वमान। माने अनित्यम, शाश्वत नहीं है यह संसार, अनित्य संसार है, टेम्परेरी यह संसार है। असुखम, असुखम मतलब यहां सुख नहीं है। लोकम, ये जो लोक है ये क्या है? असुखम, यहां पे सुख नहीं है। पहले क्या बता रहे? दुखालयम, अब क्या बता रहे हैं? असुखम, यहां सुख नहीं है। इमम, ये प्राप्य, प्राप्त हुआ है, क्या करो फिर? भजस्व मान, तुम्हें सुख चाहिए और मेरा भजन करो, समझ नहीं आई बात। हाँ, भजन करके ही सुख मिलेगा, भगवान खोल के बता रहे हैं। आप देखें, हम जैसे संसारी लोगों को देखते हैं, वे मंदिरों में जाते हैं और वो क्या बोलते हैं, बड़े लगता है भावावेश में गीत गा रहे हैं कि मात पिता तुम मेरे शरण गहूं है, इतना हंसी भी आती है बात सुन के, क्योंकि वो कुछ भी गा रहे हैं उनको उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ वर्ड्स है, एक रिचुअल है जो शाम को पूरा करना है, ये बात सुन के हमें हंसी आ रही है। पर जो तत्वज्ञानी पुरुष है वो हमको देख के हंसते हैं, क्यों? क्योंकि हम भी ये शब्द क्या हमने प्रथम बार सुना है दुखाल्यम, कम से कम 12-14 साल से अधिकांश भक्त ये शब्द सुन चुके हैं, दुख आलयम, दुखों का आलय, जिसकी बुद्धि प्रखर होने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी ठीक होगी तो दुखालय में कोशिश नहीं करेगा एक क्षण भी सुख प्राप्त करने का। अगर भगवान की वाणी पे विश्वास होता तो एक क्षण भी हम यहां सुख का प्रयत्न भी नहीं करते। क्यों? भगवान कह रहे हैं नहीं तो क्यों ट्राई कर रहे हो भाई, समय क्यों खोटी कर रहे हो। और हमारे आचार्यगणों ने भी यही बताया, सुख नहीं कभू ए संसारे, सुख कभी भी इस संसार में नहीं है, सुख आछे मायार ओ पारे, सुख आछे, ऐसा नहीं कि सुख है ही नहीं, पर लेकिन सुख ना ही कभू ए संसारे, इस संसार में सुख कभी भी नहीं है, कभी मतलब भूतकाल में भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा, सुख कभू कभी भी नहीं हो सकता इस संसार में, परंतु सुख तो है, कहां है सुख, आछे हो था अच्छे मायर हो पा रहे ओ पर, उस जगत में सुख है, चाह गलत नहीं है सुख की, पर सुख की चाह होने के बाद सुख की जो खोज है वो गलत जगह पे। अब पुस्तकालय में धनिया नहीं मिलेगा, आप एड़ी चोटी का जोर लगाओ। श्री भगवान की वाणी ही है 18वें अध्याय का 58 नंबर श्लोक, भगवान कहते हैं मत चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसी अथा चेत तुम अहंकारन ना शोष्यसी विनक्षसी, माने कि मेरी कृपा से तुम सारे दुखों को पार कर जाओगे, लेकिन यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा, विनक्षसी तुम्हारा पूर्ण विनाश हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक पूर्ण विनाश को प्राप्त हो जाओगे अगर मेरी बात नहीं सुनोगे। भगवान कह रहे हैं, भगवान की श्रीमुख की वाणी है, भगवान कह रहे हैं यहां पे सुख नहीं है, यहां प्रयत्न मत करो, अगर मैं तो करूंगा फिर भगवान क्या कह रहे हैं, क्या होगा हाल, विनक्षसी विनाश हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 24 घंटे में कितने क्षण ट्राई करना चाहिए यहां सुख का, एक क्षण भी नहीं प्रयत्न करना चाहिए अगर बुद्धिमान है। अरे आस्तिक है तो भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, आस्तिक का क्या मतलब है, आस्तिक वो व्यक्ति जिसकी भगवान पे श्रद्धा होती है, भगवान की वाणी पे विश्वास होता है, उसको आस्तिक कहते हैं, ये ठीक बात है, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक भी नहीं है वो व्यक्ति जो इस संसार में अभी भी सुख का प्रयत्न कर रहा है। भक्त होना तो बड़ी दूर की बात है, भक्त तो भगवान का हुआ जाता है, जो संसार में सुख का प्रयत्न कर रहा है तो संसार का भक्त है, ये श्री भगवान के वचन है। स्कंद पुराण में शिव जी क्या कहते हैं इस संसार के बारे में, अनित्यम इति निर्दिश्य संसारे संकटालयम, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं संसार को, दुखालय, शिव जी क्या कह रहे हैं संकटालय, संकटालय क्या होता है, संकटों की जब बाढ़ लगी रहती है, संकटों का निवास स्थान, यहां केवल संकट ही संकट है, केवल संकट, भगवान कह रहे हैं केवल दुख है, असुखम दुखालयम संकटालयम, शिव जी बता रहे हैं, आचार्यगण बता रहे हैं सुख कभू नहीं है संसार है। फिर भी यदि जीव इस संसार में सुख का प्रयत्न करता है तो उसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, कोई बोले आप पैसिमिस्टिक हो, पैसिमिस्टिक नहीं है, आस्तिक है, पैसिमिस्टिक होता कि यहां हो सकता है और प्रयास ना कर रहे हो, नहीं, जब है ही नहीं और भगवान की वाणी पे विश्वास है तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी वहां प्रयास नहीं करेगा। आपको आपकी भाषा में उदाहरण दें, जैसे मान लो बाबा जी मान लीजिए प्रकट हुए और राधा कुंड के पास में आप खड़े हो और आप बाबा जी को बोलें कि बाबा जी बाबी आपको देखें कि बहुत प्यास लगी, बोले बेटे क्या हुआ प्यास लगी है, हाँ प्यास, अब भाग रहे उस तरफ आश्रम की तरफ, आप बोले वहां जल नहीं है उस तरफ है बहुत मीठा जल है, नहीं नहीं ठीक है मैं जा रहा हूं, बाबा जी ने बोल दिया फिर भी जा रहे हैं और साथ में हम मिल गए आपको थोड़ी देर बाद, उन्होंने कहां जा रहे हो, बहुत प्यास लगी वहां जाओ, वहां जा रहे यहां मत जाओ, फिर वहीं जा रहे, बाबा जी ने बोल दिया हमने बोल दिया उसके बाद भी गलत क्षेत्र में जाओगे तो त्रिकाल में कुछ नहीं मिलेगा, जल तो दूर की बात है। उसी प्रकार से श्री भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया कि दुखालय है, शिवजी ने बोल दिया संकटालय है, उसके बाद फिर प्रयत्न करेंगे तो कहां से कैसे सुख मिल सकता है, बोले नहीं मैं प्रयत्न करूंगा, किसी को देखने वाला कोई भक्त चला गया वो जमीन को खोदे जा रहा है उससे जल नहीं मिल जाएगा, मंजे की तारे निकाल रहा है उससे जल नहीं मिल जाएगा, कोई कुर्सी तोड़ रहा है पंखा ठीक कर, तुम कुछ भी कर रहे होगे इन कार्यो से जल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से पारिवारिक कार्य करो, सांसारिक कार्य करो, व्यापारिक कार्य करो, दैहिक कार्य करो, मनोरंजनमय कार्य करो, कुछ भी कर लो सुख यहां नहीं मिलेगा, भगवान ये बता रहे। और भक्त मतलब है जिसकी दृढ़ निष्ठा होती है भगवान की वाणी पे, और जिसकी दृढ़ निष्ठा होती है उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बदल रहा है, जिसकी थोड़ा बहुत बदल रहा है उसकी कोई निष्ठा ही नहीं है भगवान की वाणी, उसके सिर्फ अपने मन की वाणी मन पर निष्ठा है, मेरा मन जो करेगा मैं कहूंगा, भगवान जो मर्जी बोले, शिवजी जो मर्जी बोले, गुरु जी जो मर्जी बोले, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, ऐसा व्यक्ति भक्त तो नहीं हो सकता, आस्तिक में भी उसकी गिनती नहीं आती। आदो श्रद्धा तथो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, समनिष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, हम प्रेम तक प्रेम प्राप्ति चाहते हैं, प्रेम प्राप्ति के लिए तो सबसे पहले कि निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं वो मेरे हित के लिए कह रहे हैं, आबद्ध होके संसार में कुछ प्रारब्धवश मुझे कार्य करने पड़ेंगे पर उसमें एक क्षण भी सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जैसे कितने यहां पे राज ऋषि हुए हैं, राजा भी हैं, त्रिभुवन यहां के राजा हैं, संसार के बड़े से बड़े राजा, पूरे भूमि के राजा, परंतु एक रानियां हैं राज्य चला रहे हैं, सुख बुद्धि नहीं है एक क्षण में। जब वो राज्य चला सकते हैं सबसे धनी सबसे मानी सबसे सब कुछ होके, तो हमारे तो छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े हैं, बाबा जी बोल रहे हैं सुख नहीं, हम बोल रहे हैं, परंतु देखिए बहुत सारे लोग वही जमीन खोदने में पानी निकालने में लगे हैं प्यास, हमको लग रहा है बाबा जी तो बोल रहे हैं पर वहां देखो कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी भी बोल रहे हैं वहां देखो कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, यही हमारा हाल है, भगवान बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हैं सुख नहीं है, परंतु देखिए संसार में सभी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सुख मिल जाएगा, ऐसे सुख, मोटरसाइकिल तेज चला रहा है वो व्यक्ति वही सुख मिल जाएगा, तो ये तो देखो आप खुद बुद्धिमानों हिसाब किताब कर लो, एक तरफ शिव जी और श्री कृष्ण बोल रहे हैं और एक जैसे ए वर्सेस बी मैच हो जैसे, तो शिव जी और श्री कृष्ण वर्सेस एक संसारी व्यक्ति और उसके दोस्त या संसारी अर्जुन, किसकी विजय होगी, हर क्षण हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं इस संसार में सुख का प्रयत्न करके, 84 लाख योनिया में हर कोई यही प्रयास कर रहा है निरंतर, क्या प्रयास कर रहा है कि जो सुख है उसकी मात्रा बढ़ती जाए और दुख जो है वो कभी ना आए, ठीक बात है, यही प्रयत्न चल रहा है हर कोई, चाहे चींटी हो चाहे बिल्ली हो चाहे अमेरिकन हो चाहे आप इंडियन हो चाहे कोई श्रीलंका का हो, हर कोई यही प्रयत्न कर रहा है कि सुख की मात्रा बढ़ती जाए और दुख कभी भी ना आए। परंतु आखिर ये एक दुख खबरी है, खुशखबरी होती है दुख खबरी कह लीजिए, कि ये नहीं होने वाला किसी के साथ, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे एक कॉइन होता है सिक्का, सिक्का का एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, उसी प्रकार से इस संसार में जो भी आएगा उसको दो चीजें प्राप्त होंगी, सुख और दुख। तो आप कहोगे मुझे हेड ही हेड चाहिए, टेल चाहिए ही नहीं। आपको ना चाहिए हो पर मिलेगा जरूर, आपको जरूर मिलेगा। और भगवान ये गलत फहमी कैसे दूर कर रहे हैं, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी बता रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्त्र कौनतया, कि सुख और दुख जो है इनको सहन करना सीखो। और हम क्या कर रहे हैं, सुख को बढ़ा रहे हैं कोशिश। भगवान के इसको तो सहना है तुमने, तो इसको हम बढ़ा रहे हैं। सोचो जिसको टॉलरेट करना है उसकी हम वृद्धि कर रहे हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इसी कार्य में लगे हैं कि दुख मेरे को बिल्कुल भी ना छुए और सुख ही सुख प्राप्त होता रहे। पर आप समझ लें, ऐसा त्रिकाल में किसी के साथ ना हुआ है ना होगा। चाहे आप झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हो, चाहे आप अंबानी हो, आपको तीन कलेश कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्या है? आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक कलेश क्या होते हैं? जैसे अपने मन से और शरीर से कष्ट पाना, बीमारी होना, मन सब कुछ ठीक है, मेरा मन ठीक, डिप्रेशन, डिप्रेशन है, मन ठीक नहीं है, टांग ठीक नहीं है, किडनी, कितने कितने प्रकार के दुख हैं, हेडेक, माइग्रेन, पीठ की दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस। तो मन का कष्ट, आध्यात्मिक, आदि भौतिक मतलब अन्यों के द्वारा दिए गए, जैसे हमारे बच्चों द्वारा या माता पिता द्वारा या पत्नी द्वारा या पूज्य पतिदेव द्वारा या पड़ोसी द्वारा या अन्य भक्तों द्वारा, ये कलेश किसी को नहीं छोड़ते। चाहे वो बाबा जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी हो। पर आदि दैविक कलेश, ज्यादा बारिश हो जाना, ज्यादा ठंडी हो जाना, या ज्यादा मतलब अर्थक्वेक, भूकंप आना, इस प्रकार की चीजें, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जन्म का क्लेश किसी को नहीं छोड़ेगा। जन्म में पता है कितना क्लेश होता है, जब बाहर आता है ना जी, ऐसे लगता है उसकी चमड़ी छीर के उसको बाहर निकाला जा रहा, उसको ऐसा दर्द होता है, उससे चमड़ी उधेड़ते हैं ना जैसे, और फिर बाहर निकाला जाता है, सबको वैसा कष्ट होता है, एक 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 जीव को जब वो बाहर आता है, ऐसी ऐसे दर्द के मारे हालत खराब होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चमड़ी उधेड़ दी जाए किसी, फिर निकालो बाहर, और उससे पहले मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है, उल्टा कमान की, तीर कमान होता है ना वैसे, कमान की तो उल्ट, एकदम छोटे से स्थान में उल्टा लटका हुआ, ऊपर से मां कुछ भी मिर्ची खाएगा, नमक खाएगा, उसके उसको जलन होती है, उसको दबा के, और कीड़े काटते हैं अंदर गर्भ के अंदर। जन्म में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, अभी हम सोच भी नहीं सकते, हम विस्तार से किसी दिन ये जो जन्म का कष्ट है इसको बताने के लिए हमारे को दो सत्र लगेंगे, एक बार में भी पूरा नहीं होगा, दो बार बताना पड़ेगा, तब जाकर आपको थोड़ा समझ आएगा कि जन्म का कष्ट क्या होता है। अभी सिर्फ थोड़ा सा बता रहे हैं, जन्म और बुढ़ापे का कष्ट, कौन बुढ़ा होना चाहता है? हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल जा रहे हैं, चलना कठिन हो रहा है, खाना पचाना कठिन हो रहा है, ये बीमारी, पीठ दर्द, आंखें कम दिखना, सिर दर्द होना, कितने कष्ट हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, बीमारियां, और जब मृत्यु होती है, मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, एक साथ। आप ये सोचो, जिनके साथ आप घर वालों के साथ दो चार दिन ना मिले तो बस फोन करो, व्हाट्सएप करो, इतना रहता है, उनको पता है आपको परमानेंटली छोड़ना पड़ेगा और कभी दोबारा नहीं मिल पाओगे, कितना कलेश होगा उस समय, बहुत कलेश, बहुत दर्द होता है। तो चाहे आप अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, आपको आदि भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश, आदि दैविक कलेश जीवन के हर दिन सताएंगे ही सताएंगे, और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इसके लिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं 13वें अध्याय में 8वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनको दुखों के रूप में दोषों के रूप में जानो, तुम सच्चिदानंद प्रभु के सच्चिदानंद अंश हो और सच्चिदानंद धाम है जहां पे सच्चिदानंद प्रभु रहते हैं, तुम भी सच्चिदानंद हो, तुम यहां अनित्य लोक में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम इस अनित्य लोक, तुम अनित्य लोक में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम इस अनित्य लोक को दुखाले नहीं मान रहे, यहां कोशिश लगे हुए हो किसी तरह मैं सुख, बाबा जी बोल रहे नहीं है सुखे, गुरु जी बोल रहे नहीं, वो लोग तो कर रहे हैं कोशिश, लोग तो आपको देख के भी, आप लोग भी कुछ लोग अपर मिडिल क्लास हो तो लोग आपको देख के भी खुश होते होंगे, जो लोअर क्लास के हैं झुग्गी वाले कि हाँ साहब को देखो कि साथ में तो गाड़ी है एक नहीं दो, अपना घर है, अपनी फैक्ट्री है, बीवी है, बच्चे देखो बढ़िया स्कूल में जाते हैं, एसी वाले स्कूल में गाड़ियां हैं, तो वो जब देखते हो क्या सोचते होंगे, साहब के पास तो कितना सुख है, वो जो साहब हमारे पास आते हैं हमें पता ना साहब का क्या हाल है, जैसे आपको ये बात समझ आ जाए यहाँ अपना हाल हमें पता है, वैसे ही आप सोचते हो कि हम बानी इन लोगों का सुख है, वो लोग संतों के आते हैं तो पता, संतों को पता उनका क्या हाल है, जैसे झुग्गी बड़े को आपके बारे में गलत फहमी है, आपको अंबानी के बारे में गलत फहमी, बस गलत फहमी की वजह से सुख यहां कोशिश कर रहे हैं ढूंढने, आपकी छोड़ो जो इंद्र है जलता रहता है, इंद्र कौन है, ऋग्वेद का पहला मंत्र इंद्र के नाम है, ऋग्वेद का पहला मंत्र ही, इतना बड़ा देवता है और फिर भी क्या है, ब्राह्मण पदम वांछति, वो ब्रह्मा का पद चाहते हैं, सोचो इंद्र बन गए और फिर क्या जल रहे हो, मेरे को ब्रह्मा का पद चाहिए, और जो इंद्र के लोक में लोग हैं, और ये मैं सोचा स्वर्ग की स्वर्गवासी होना बड़ी अच्छी बात है, बहुत बुरा हाल है स्वर्ग में, स्वर्ग के लोग एक दूसरे को देख के जलते रहते हैं, इसके पास मैसेज ज्यादा है, इसके पास मैसेज ज्यादा है, क्रॉस कंपैरिजन यहां पे भी बहुत भीषण समस्या है और वहां पे भी, तो सोचो ना जो बंदा हर समय जल ही रहा है वो खुश कैसे होगा, और स्वर्ग भी जो है इसी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, संकटालय, किसके अंतर्गत, संकटालय, दुख आलय, किसी ने कुछ कह दिया कितना कष्ट हो जाता है, किसी को कुछ क्या कह दिया, यहां भगवान श्री कृष्ण को लोग नहीं छोड़ते हैं, शिशुपाल ओपन में गालियां देता था भगवान को, एक नहीं दर्जनों, सारे राजाओं महाराजाओं के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को गालियां निरंतर देता था शिशुपाल, तो जो लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो आपको हमको कोई छोड़ देंगे, कभी कोई नहीं छोड़ेंगे, आप कोई भी हो और जितने मर्जी निस्वार्थी हो, अरे भगवान को ही गालियां मिलती हैं संसार में, राम को नहीं छोड़ा, सीता के ऊपर कलंक लगा तो आपको छोड़ देंगे, शायद पर मैं तो सही हूं तो क्या भगवान गलत है, हमारा सुनने के बाद भी हम यहां सुख की खोज कोशिश करते रहते हैं, हमारा सुख का खोजने का उसी सारा जैसे वोल्केनो ज्वालामुखी हो, ज्वालामुखी के किनारे पे बैठ के हम क्या कर रहे हो, क्या बोलो, बर्फी लाने की बात कर रहे हो या बर्थडे मना रहे हो या किस लिए, कहां बैठे हो, ज्वालामुखी में, और ज्वालामुखी जो है इस दुखाले का एक अंश है, वो इतना कष्ट में, तो टोटेलिटी में जो जगत है वो कितना कष्ट में होगा, आप सोचो, हम ये मजे से हंसी मजाक कर रहे हैं, कडलिंग कर रहे हैं, तो ज्वालामुखी के पास बैठ के, तो ये तो ज्वालामुखी से कितना बड़ा संसार है जो दुखों का आलय, संकटों का आलय है, संकटों के आलय में अगर कोई आए, जैसे मान लो आपके पीछे बंदूक लेके चोर लग गए हो और भागे 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 जा रहे हो, कहीं बैठ जाओगे तो हर क्षण क्या सोचोगे, क्या सोचोगे, यहां से कैसे बाहर निकलूं, यहां से कैसे बाहर निकलूं, तो जो भक्त है उसको अच्छे से समझ आ गया दुखों का संसार है, वो एक क्षण भी प्रयत्न भी नहीं करता यहां सुख के लिए, वो हर समय से एक बात सोच रहा है, मैं यहां से कैसे बाहर निकलूं, एक सिंगल क्वांटिटी इंटेलिजेंस, व्यवसात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, मैं यहां से कैसे बाहर, देखो भाई हम यहां कोई संसारी रिश्ते बनाने और ना निभाने आए हैं, समझे, ये संसार में दुखालों से पटका गया हमारे को, ना हमारा किससे रिश्ता था, अरे भैया बात बताओ, जेल में आपको पटका गया और फेलो कैदियों से आप रिश्ते बनाने बैठ रहे हो, तो आप अकलमंद हो के बेवकूफ नंबर एक हो, बेवकूफ हो, क्यों, तुम्हें जेल की सजा दी गई है, अच्छा काम करो फटाफट बाहर निकलो, तुम यहां रिश्ते बनाने में लगे हो, जन्म जन्म का साथ है हमारा। तुम एक कैदी हो तुम और एक एक दूसरे टुच्चे व्यक्ति से तुम संबंध मानते हो अपना। सच्चिदानंद प्रभु के अंश और एक निहायत ही घटिया व्यक्ति से संबंध मानते हो अपना जो काम क्रोध से भरा हुआ है। चाहे तुम्हारे बाप हो चाहे तुम्हारी बीवी हो चाहे तुम्हारे बच्चे हो सारे वही हैं मलमूत्र के भांड काम क्रोध के भरे हुए। अरे भाई बाहर निकलो यहां पे संबंध बनाने निभाने थोड़ी ना पे हम यहां पे आए हैं। हमारा तो वो हाल है कि हमने देखा हिमालय हिमालय जो होता है पर्वत वहां पर बड़ा सुंदर पानी आता है यूं करके लोग पानी पीते हैं तो हमको लगता है कि भाई हिमालय से आता है वो मिनरल वाटर वाला होता है तो जो भी इस प्रकार का स्थान है उससे जो पियेंगे वो होगा। यहाँ माधीपुर में भी कूड़े के ढेर में हिमालय जैसे लगते हैं तो फिर वो हिमालय और ये तो यहां से आपको अमृत नहीं मिलेगा यहां से पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यहां पे कुछ सुख योग्य वस्तु नहीं मिलेगी संसार में ये समझना हो। अरे शिव जी को कैसे काट सकते हो संकट आल्य श्री कृष्ण कह रहे हैं दुख आल्य। आप ये सोचो कि इतना गूढ़ तत्व है तभी हम आज के दिन बोल रहे हैं क्योंकि भक्त का मतलब है जो विकल होके राधा रानी को पुकारता है हरे कृष्ण भगवान का नाम लेता है विकल होके। विकल मतलब मेरे को यहां से बाहर निकालो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसे विकलता से पुकारोगे तो उन तक पुकार पहुंचेगी नहीं तो देखेंगे ये तो यहीं पे ही लगा हुआ है इसकी तो बात ही मत सुनो ये तो ऐसे ही बोल रहा है वही मात पिता तुम मेरे शरण कहूं मैं किसकी। ये वैसे ही हरे कृष्णा और वैसे ही राधे राधे और वैसे ही सारे कुछ कर रहा है ये सुनने योग्य भी नहीं है इसकी बात क्योंकि उसका याद है प्रयत्न ही खत्म नहीं हो रहा अभी तक। आप एक सोचो एक स्त्री हो और वो नंगे पांव चल रही हो और कांटे ही कांटे हो जिस जगह पे मान लो वन है नंगे पांव चल रही हो कांटा लग गया बाई चांस आप पास में वहां पे तो आपने उनकी मदद कर दी कांटा निकाल दिया लाभ हो गया। अब उनको फिर से क्या है वो फिर आगे चल रही है अगले कदम पे क्या होगा फिर कांटा लगा आगे कभी फिर मदद कर दोगे फिर कांटा निकाल दोगे उनके फिर नंगे पांव है फिर आगे चल रही है फिर क्या होगा फिर कांटा। ये संसार में वही है पदम विदम पदम पदम यद विपदम ये भागवत का वर्णन है पद पद पे विपदा है हर पद पे विपदा है हर क्षण कष्ट है। तो जो उसकी मदद कर रहा है कांटे निकालने की वो भी अच्छा व्यक्ति है परंतु कब तक करेगा वो जब तक तो निर्णय नहीं करेगी इस स्त्री की मेरे को यहां नहीं चलना तब तक तो उसको कष्ट होते ही रहेंगे। तो इस संसार के जितने भी व्यक्ति हैं जब तो वो निर्णय ही नहीं करेंगे कि हम आपके संसार में नहीं रहना तो यहां कष्ट खत्म नहीं होंगे अच्छे से सुन लो। आप ये सोचो दो चार माला घुमाते हैं या 20-50 माला घुमाते हैं हमारे कष्ट मैं तो भक्त हूं ये कष्ट नहीं आने चाहिए भगवान ने कहीं बोला है ये बात कि भक्त हमें कष्ट नहीं आएंगे भगवान तो कह रहे हैं इनको सहो सहो कष्ट आएंगे। आप कोई भी हो चाहे आप अंबानी हो चाहे आप जोगी वाले हो आपको कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। ये नहीं कि भक्त हो तो कष्ट नहीं आएंगे। आप बड़े से बड़े संत को देखो कितने संत होते हैं किसी को ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है किसी को कैंसर हो जाता है किसी को पैरालिटिक अटैक हो जाता है कोई बिल्कुल चल नहीं सकते किन्हीं को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। एक संत को हम जानते हैं सिद्ध संत थे एक बूंद पानी उनके अंदर नहीं जा सकती थी इतनी मेहनत करने के बाद एक बूंद पानी कोशिश कर रहे हैं अंदर नहीं जा। तो ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं होंगे नष्ट नहीं होंगे कष्ट भी होंगे और नष्ट भी होंगे और हम भी नष्ट होंगे हमारे परिवार का एक एक व्यक्ति के साथ यही हाल होगा। इसके प्रमाण तो स्वयं श्री कृष्ण का परिवार है यदु परिवार जो है भगवान श्री कृष्ण जब जाने वाले थे तो हजारों हजारों लोगों का यादवों का परिवार था तो क्या हुआ वह आपस में लड़ उठे और क्या हुआ सबने एक दूसरे को मार दिया। आप सोचो सबने एक दूसरे को मार दिया किसके भगवान के पुत्र पर पुत्र सबने एक दूसरे को मार दिया। इस संसार में सुख तो उनके लिए भी नहीं है। मूल बात यह है कि हम यहां पे हैं क्यों हम यहां क्यों हैं इस संसार में दुखों के संसार में हैं क्यों हमें क्यों यहां पे डाला गया। एक ही इसका उत्तर है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल के ही जीव भोग वांछा कर सकता है। कृष्ण को भूलोगे, कृष्ण की वाणी को बोलोगे, तभी तो यहां मुंह घुमाओगे। यहां सुख के लिए सुख चाहिए, भगवान की वाणी को दुखाले है संसार, उसको भूलना पड़ेगा अच्छे से, संकट डाले है सबको भूलना पड़ेगा, तब यहां प्रयत्न होगा कि हमें यहां पे सुख मिल जाए किसी तरीके से। ये बेसिकली होप अगेंस्ट होप है, कोई संभावना नहीं है फिर भी व्यक्ति लगा हुआ है। और जब दुख होता है, दुख तो हर समय होते हैं, तो हम कष्ट क्या करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, ये इनकी वजह से हमें दुख हो रहा है। जैसे माता पिता है बोलते हैं बच्चों की वजह से हमें दुख हो रहा है, बच्चे होते हैं बोलते हैं माता पिता की वजह से हो रहा है, पत्नी बोलती है पति की वजह से, कोई बोलता है हमें दोस्त की वजह से हो रहा है, तो हम ब्लेम करते हैं। देखिए ब्लेम करने का कोई प्रयत्न नहीं है, जो आपके कोटा का दुख है ये सृष्टि भगवान की इच्छा से चल रही है, जगत के रचयिता वो हैं, जगत के चालनकर्ता भी वही हैं, तो उनकी इच्छा की वजह से ही आपके जो कोटे का दुख है किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा किसी न किसी समय किसी न किसी प्रकार से आपको प्राप्त होगा ही होगा। तो अब ये मत सोचें कि उसकी वजह से प्राप्त है, ये सोचें उसके पीछे कौन है। आपके कोटे का दुख आपको प्राप्त होगा चाहे बंकर में छुप के बैठ जाओ, चाहे आप सऊदी अरेबिया में बंकर बनाओ उसके अंदर छुप के बैठ जाओ, दुख आपको वहां पर भी आके पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। अब देखो कई बार ये पाया जाता है, 2 साल की बच्ची होती है अभी पैदा हुई है और क्या होता है हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट में छेद होता है 2 साल के बच्चे को। हमने देखा है कई बार 4-6 महीने के बच्चे हैं पैदा हुए हैं उनको कैंसर है, ये भी देखा जाता है। अभी एक बहुत बड़े प्रिंस थे कोई अरब किसी कंट्री के, वो 30 उनका इकलौता पुत्र था 30 साल का, वो मर गया हार्ट अटैक से। तो उनका जो कष्ट है अरबों रुपए है, अरबों भी नहीं होगा खरबों रुपए है, पर कष्ट क्या है आदि भौतिक आदि दैविक आदि आध्यात्मिक, ये तीनों कलेश नहीं छोड़ेंगे, ये कलेश यहां नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। हम यहां कोशिश कर रहे हैं कि हमें बस सुख मिल जाए और दुख बिल्कुल ना मिले। ये कॉइन है, टेल और हेड दोनों हमेशा रहेंगे सांसारिक, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसके दुख चले गए इस संसार में, किसी के साथ ऐसा नहीं, हमारे साथ भी नहीं होगा। और इसका कारण सिर्फ यही है, कृष्ण को भूल के ही हम सुख की चेष्टा कर रहे हैं। अब जैसे बछड़ा होता है, बछड़े को आप गायें हजारों गायें हैं उसके बीच में छोड़ दो तो हजारों लाखों गायों के बीच में से अपनी मां को जाके वो पकड़ लेगा, उसे ये बताना नहीं पड़ेगा लंबी सींग वरी काली सी वो कम काली ये हमारे बोलना नहीं पड़ेगा, वो जाके पकड़ लेगा अपनी मां को। जैसे बछड़ा अपनी मां को जाके पकड़ लेता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन के जो दुख हैं हमारे को आके लिपट लेते हैं। जैसे बिना चेष्टा किए आपको सुख आ रहे हैं और दुख आ रहे हैं, बिना चेष्टा किए आपको आएंगे ही आएंगे दुख, और कुछ नहीं करते अचानक बैठे हो पांव फिर से ज्यादा हड्डी टूट जाती है और जीवन भर चलने के लायक नहीं, तो दुख ने आपको आके ढूंढ लिया बछड़े ने जैसे ढूंढा होता है। तो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कभी भी, ब्लेम करने का मतलब है कि आप मूल कारण तक ही नहीं जा रहे। कोई समस्या कभी भी आए उसके मूल कारण पे जाए, मूल कारण क्या है, क्या है मूल कारण दुखों का, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, यही एकमात्र कारण है। कृष्ण को भूले हो तो यहां तुम्हें दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, तुम कुछ भी कर लो। हमने कुछ समय पहले पाया कि एक हाउसवाइफ थी, स्त्री छोटे छोटे बच्चे, उसके घर में किचन में काम कर रही, सिलेंडर फट गया और उसका मुंह सब जल गया, सारा शरीर जल गया, बेचारे गरीब लोग 10-20 हजार रुपये महीना कमाने वाले लोग, तो सब जल गया, लाखों रुपए के खर्चे और शरीर खत्म। तो दुख कितने हैं एक क्षण में देखो, कितना दुख है। और क्यों आया है, कृष्ण भूलिया की वजह से, हमें लगा सिलेंडर की वजह से आया। सिलेंडर तो तब है ना आप जब यहां पर खोदो, अगर आपने संसार को दुखाले मान के भगवान का भजन किया होता तो आप यहां होते ही ना, और यहां पे आके आप सोचते हो हमें दुख ना आए, दुख आले में दुख ना आए, हिमालय में बर्फ ना आए, पुस्तकालय में पुस्तकें ना आए, इसका क्या मतलब हुआ कि हम व्यर्थ की बातें करते हैं। आई एम वेरी डिस्टर्ब, तो भाई यहां पे डिस्टर्ब नहीं होगे तो क्या आई एम वेरी हैप्पी होगी, आई एम वेरी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब होने के लिए तो ये संसार है, इसलिए थोड़े आप अच्छे से एंजॉय करो बैठ के। इतने दुख मिलने के बाद भगवान की मुख नहीं और मुख नहीं मोड़ रहे, तो थोड़ा वो भी ठीक होता तो कभी भी मुखना नाम माला ही ना पकड़ते कभी। तो ये संसार में भगवान ने ऐसे रचा है पूरे संसार को, एवरीथिंग एंड एवरीवन इज डूइंग समथिंग, थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे करा कि भगवान की ओर जाए। किसी संबंध से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, किसी चीज को खा के पी के संतुष्टि नहीं मिलती, क्यों? वो उस ओर धकेल रहे हैं कि जाओ उनकी उनकी ओर। हम यही देखते हैं, वो भी ऐसे कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऐसे कोशिश, उसको भी ऐसे सुख, वो भी सुखी लग रहा है, हमें लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने सबको भगवान बना के रखा है सिवाय भगवान के। मतलब भगवान जो बोल रहे हैं वो पे विश्वास नहीं है, और मिस्टर शर्मा, मेरी मम्मी, वो ये प्रभु जी और ये जो बोले उनकी बात पे विश्वास है। क्या बोलते चलता है? अरे कैसे चलता है? बिल्कुल नहीं चलता। ये तो चलता है, ये कुछ भी नहीं चलता ऐसा। ये दुखा ले में सुख कैसे चलता है बताओ? नहीं नहीं इतना तो चलता है। अरे ठीक है, तुम यहां रहना यहीं चाहते हो तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है। कुशल हो? हाँ जी बिल्कुल कुशल है। पूछने वाला भी मूर्ख, बताने वाला भी मूर्ख। दुखा ले में कोई कुशल हो सकता है? मतलब प्रश्न करता ही मूर्ख है। कुशल हो नाम तुम्हारा कुशल भले हो जाए, तुम कुशल नहीं हो सकते। हाँ आनंद पूर्वक हो, दुखाले में आनंद पूर्वक हो, प्रश्न करता देखिए। हम भी यही चाहते हैं बच्चों को, ये दूतो ना पूतो, ये दूतो पूतो कुछ नहीं है, ये दुखाले है। दुखाले में कोई दूतो पूतो नहीं होगा, यहां मरो पिसो यही होगा। सुख सुख की लालसा करते सूखते जा रहे हैं, सुख का कण कभी नहीं मिल रहा, सूखते जा रहे हैं सुख 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 सोच सोच के, पर कण भी सुख का नहीं मिल रहा। जब तक विकलता से भगवान को नहीं पुकारेंगे, सुख स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। और विकलता तभी आएगी जब इस संसार में सुख का प्रयास करना बंद करेंगे। भगवान का नाम अति मीठा है, हमें मीठा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम नीम खा के बैठे हैं, नीम की गोलियां खा रहे हैं पचासों साल से। तो संत जन आचार्य जन यही कह रहे हैं कि भाई कुछ देर नीम खाना छोड़ दो, संसार में सुख का प्रयत्न करना छोड़ दो और नाम लो, फिर देखो कैसे अमृत का स्वाद। एकदम से नहीं होगा, क्यों? वो कड़वाकट, वो टेस्ट तो रहेगा मन में अंदर, क्योंकि तुमने इतने समय से प्रयत्न करा है। पर जब छोड़ दोगे संसार में सुख का प्रयास करना, और फिर नाम सुधारस करिय पान, राधा नाम सुधारसम, अमृत रूपी राधा नाम लेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, तो सुख आना शुरू होगा। ये सार बात है। हम व्यास पूजा की भेंट अर्पण करना चाहते हैं, ये सब ठीक है, पर सबसे श्रेष्ठ व्यास पूजा की भेंट क्या है कि आप आजीवन के लिए समझ लो ये दुखाले में शाश्वतम है। ये है सबसे बड़ी भेंट, ये समझ लो कि आप, और आजीवन के लिए, ये नहीं कि आज के लिए समझा कल परसों फिर संसारी बन गए फिर से। दुखाले में शाश्वतम अनादि, ये अनंत काल तक संसार ऐसे ही रहेगा दुखों का, कोई प्रयास प्रयत्न करके इसको बदल नहीं सकता। बदलना किसको है? हमको। संसार नहीं बदलने वाला, दुखों का हाल रहेगा। आगे चल के तो लोग 20 साल की उम्र भी किसी की हो जाएगी ना, मानेंगे बहुत वृद्ध व्यक्ति हो गया, शास्त्र में बताया गया 20 साल का, अब तो बड़े बड़ी उम्र हो गई आपकी, ऐसे बोला जाएगा। और इतनी छोटे छोटे से कद के होंगे लोग, कितने पीछे बीमारियां होंगी उसके अंतर्गत। और भगवान संसार के बारे में क्या कहे? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, ये मृत्यु संसार का सागर है, ये मृत्यु का सागर है। सोचो मृत्यु के सागर में हम खुशी की कोशिश कर रहे हैं, सोचो कौन बताएगा कि हम इतना जानते हैं 10-12 साल से, सबने शब्द सुना था दुखाले, इस प्रकार से समझा था इसको कभी? देखो शास्त्र तो रहेंगे, पर जब तक कोई तत्व ज्ञानी महापुरुष नहीं होता, शास्त्र का मतलब कभी समझ ही नहीं आए, समझ मतलब बोल ही नहीं हो पाएगा क्या कह क्या रहे हैं। हम पढ़ के छोड़ देंगे, पढ़ा छोड़ दिया, पढ़ा छोड़ दिया। आप बताइए हम संसार में किस किस प्रकार से मूर्खतावश कोशिश करते हैं सुख की, बताइए बताइए।
तो
सुख मिल जाएगा खा के, और
इतना इतना पैसे कमा के तृप्ति मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी।
और आप ही लोग करते हो, हम तो कुछ भी नहीं करते। मैं सिर्फ सोचो, अपने आप से पूछो, 17 साल के थे तो भी वही बर्थडे, खाना पीना, मॉल घूमना। 27 को है तो वही बर्थडे, खाना पीना मॉल घूमना। 37 के हो गए फिर वही बर्थडे खाना पीना मॉल घूमना। 47 के हो रहे हो वही बर्थडे खाना पीना मॉल घूमना। तो हमारे अंदर हमारे विचारधारा में बदलाव कहाँ है? हमें बदलाव कहाँ है? वर्ष बीते आ रहे हैं 17, 27, 37, 47 बदलाव कहाँ है? वही के वही। बाबा जी की अगर वाणी को आप लें पढ़ लीजिएगा, बाबा कहते हैं कि भक्ति का मतलब एक नया जीवन गठित होना। और ये समझने की बात है, जब व्यक्ति को समझ आ गया दुखों का संसार तो यहां कोशिश ही नहीं करेगा, और कोशिश भगवान की ओर करेगा तो नया जीवन तो गठित होगा ही। जब तक इस संसार को दुखाले नहीं मान रहे तो नया जीवन गठित हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो यहां चेष्टारत हो ही। गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान? सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रियः। वो आरंभ ही नहीं करता, सर्व आरंभ परित्यागी, वो आरंभ भी नहीं करता चेष्टा का यहां सुख होने की। सर्व भक्त समय प्रियः, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कौन? सर्व आरंभ परित्यागी। हमें प्रिय होना है भगवान के। हाँ, क्या करो? सर्व आरंभ परित्यागी, प्रयास भी मत करो सुख का। यहां ऐसा नहीं, हाँ ये सुनते हैं तो याद रहता है फिर भूल जाते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रिय। जो स्थिर मतिर है वो भगवान को प्रिय होता है, ना कि चंचल मति। यहां इनका सुना तो इनकी, यहां इनकी बात सुन ली, उनका सुना तो उनकी बात सुन ली, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। जैसे बस डिपो होता है ना, बस डिपो, बस बस डिपो मतलब आगार, वहां बसों का आगार, बस से ही बस है, बस से ही बस है। वैसे ये दुख डिपो है संसार, यहां दुख ही दुख, दुख ही दुख है। चाहे शिव जी की बात मानो, श्री कृष्ण की बात मान लो, कि भगवान की बातें तो माननी चाहिए संतों की, भक्त की। मतलब शिव जी तो भक्त हैं, और कोई ना हो भक्त, शिव जी तो भक्त हैं। संकटाल्य, जब तक संसार में हम सुख की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी कुबुद्धि है, कुबुद्धि, खराब बुद्धि वाला व्यक्ति संसार में सुख की चेष्टा करता है। और जो सुबुद्धि है, सुबुद्धि मतलब वो भगवान की ओर जाता है निरंतर, और कुबुद्धि ये संसार में लगाओ। अब आप सोच रहे हो ये विषय हमने क्यों लिया है आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन भी, तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है ताप त्रयाग्नि तप्ता नाम अशांत प्राणी नाम भूवि। ताप त्रयाग्नि, ये तीन ताप जो है ताप त्रय कहा जाता है इनको। कौन से ताप हैं? आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक, ये ताप हैं, ये जलाते रहते हैं हर जीव। ताप त्रयाग्नि, ये अग्नि के समान है। तप्ता नाम, इससे सारे जीव तप्त रहते हैं, जलते रहते हैं हर समय, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे आप हो, चाहे वो अमेरिका में, हमेशा जलते रहता है जीव। ताप त्रयाग्नि तप्ता नाम अशांत प्राणी नाम भूवि, अशांत रहता है व्यक्ति तीनों तापों से जलता हुआ। तो समाधान क्या है? गुरुर एव पराम गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे जलते हुए प्राणियों के लिए गुरु ही एकमात्र गंगा है जो उसको शीतल करती है। रामचरित मानस में भी बताया गया है और श्रीमद भागवत में भी बताया गया है कि है दुखों का संसार, पर जीव इसमें भी एक ही बात बोले, खुश कैसे हो सकता है? जब उसे संतों का आगमन मिलता है, जैसे गृहस्थों के घर जो इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं, उनको संतों का आगमन जब मिलता है तो मोर की तरह नाच उठता है व्यक्ति, नाच उठता है संतों के आगमन से। तो इस दुख में संसार में भी एक ही सुख का कारण है, क्या? हमारे जीवन में संत का आना, किसी महापुरुष का आना, केवल एक ही कारण है जिससे जीव सुखी हो सकता है, अन्यथा सुख होना। ये भगवान राम भी बोल रहे हैं और श्रीमद भागवत भी यही बात बोल रही है। और स्कंद पुराण क्या बोल रहे हैं? गुरु प्रसादात अन्यत्र सुखम नास्ति महितले। गुरु प्रसाद अन्यत्र, गुरु की कृपा के बिना, गुरु के दर्शन के बिना सुखम नास्ति महितले, इस संसार में सुख कहीं पे भी नहीं। अगर सुख है तो गुरु के चरणों में, गुरु की वाणी में, गुरु के दर्शन में, गुरु के संग में। इस संसार में सुख है, ये एक रूल टू द एक्सेप्शन टू द रूल बताया गया। जो गुरु चरणों में बैठ के जो शांति है वो सारे भोग भोगने के बाद भी प्राप्त नहीं होती है। एकमात्र स्थान जो है सुखम नास्ति महितले, गुरु प्रसादात अन्यत्र, गुरुदेव परागंगा। शीतलता प्राप्त गुरु चरणों से होती क्यों होती है? गुरुमुख से क्यों होती है? क्योंकि गुरुमुख से साक्षात ईश्वर बोल रहे हैं। जब ईश्वर की वाणी प्राप्त हो तो शांत, तो उनके संतान को शांति कैसे नहीं मिलेगी? जैसे माइक है, माइक नहीं बोल रहा, बोल कौन रहा है? हम बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जीव गुरु के मुख से गुरु नहीं बोल रहे होते, ईश्वर बोल रहे होते हैं। माइक है गुरु, बोलने वाला गुरु नहीं है, माइक है वो, माइक से फ्लो कौन कर रहा है? गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म, गुरु के मुख में ब्रह्म साक्षात ईश्वर है। गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म, स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत् प्रसाद। कैसे प्राप्त होते हैं? जो ईश्वर है गुरु के मुख में है, पर प्राप्त कैसे होते हैं? तत् प्रसाद, उनकी कृपा से। जब हमारी सेवा से संतुष्ट होते हैं, उनकी कृपा से ईश्वर हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक संत हुए रामानंद आचार्य। रामानंद आचार्य एक स्थान पे थे, तो वहां पे कुआं था जहां से पानी पिया जाता था। तो पानी पीने के चेष्टा में बहुत बदबू आ रही थी, सड़ रहा था से पानी, ऐसा हो रहा था। पानी बहुत अच्छा था कुएं का, पर ऐसा हो रहा था। तो देखा तो ऊपर जो पेड़ है उसके पत्ते जो थे वहां पे पड़ रहे थे, तो वो दुर्गंध मचा रहे थे। तो गुरु जी ने बोला कि ये टहनी यहां से काट दो ताकि पत्ते ना गिरे, और काटनी सिर्फ इतनी ही है ताकि वो किरण फिर आ सके। सूर्य किरण के हिसाब से बता रहे थे। तो उसमें समस्या ये थी, अगर उतनी ही काटनी जितनी गुरु जी कह रहे हैं तो सीधा व्यक्ति कुएं में गिर जाएगा। तो कितनों को पता चला गुरु आज्ञा हो गई है, अब कुएं में गिरने कोई तैयार ही नहीं है, गुरु ने तो आज्ञा दे दिया। फिर एक शिष्य थे, उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं जाता हूं। तो शिष्य ने बोला गुरुजी ये जा रहे हैं, ये सीधा काट देंगे, सीधा कुएं में सीधा गिरेंगे। गुरु जी कुछ नहीं बोले, उदासीन बैठे। वो शिष्य गए, उन्हें टहनी काटी और सीधा कुएं में गिर गए। और गुरुजी के पास अन्य शिष्य आए, अरे गुरुजी देखिए वह कुएं में गिर गया, उसका वैस अब मृत हो चुका है। तो गुरुजी ने तब भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसी कुएं से बहुत प्रचंड कांति रोशनी आने लगी कुएं से, तो सब हैरान हो गए। तो फिर वहां से जय हो की आवाजें आने शुरू हो गई। फिर देखा तो वहां पे साकेत बिहारी, साकेत बिहारी कौन है? श्री राम, और श्री राम के भक्त है रामानंदाचार्य। तो राम के भक्त फिर वहां पे आवाज हुई, जो साकेत बिहारी के जो पार्षद थे, भगवान राम के पार्षद, उन्हें लेने के लिए आए थे। और तो वो ये बोले थे गुरु चरणों में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उनका स्तवन होने लगा। पहले स्तव करे, स्तुति हो रही थी उनकी कि गुरु जी गुरु आज्ञा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया, वे कौन है, उनकी जय हो ऐसे करके उनको भगवान राम के धाम ले गए, साकेत धाम। साकेत धाम में सीता मैया के दर्शन हुए, भगवान राम उन्होंने अपना महाप्रसाद खुद खिलाया उस भक्त को, अपना डायरेक्ट महाप्रसाद खिलाया, और बहुत खुश हुए और बोला भगवान राम ने कि तुम्हें जिन गुरु की कृपा से मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं और मेरे धाम के दर्शन प्राप्त हुए हैं, जाओ और वापिस उनकी सेवा कर। तो फिर वो व्यक्ति वापिस आया और गुरुजी के पास आया और गुरुजी को प्रसाद दिया, भगवान राम ने ये प्रसाद आपके लिए दिया। तो गुरुजी ने बोला कि तुम लेट क्यों हो गए? तो गुरुजी को बोलते कि वो पहले तो श्रवण करने लगे, इतनी देर श्रवण में लग गई कि जो गुरु आज्ञा में जिन्होंने प्राण, वो तो खैर झिझक के ही बता रहे थे कि इतने प्राण समर्पित करे हैं, उनका जय हो और ये सब, ऊपर फिर महाप्रसाद दिया इस प्रकार से। तो जो गुरुजी की आज्ञा प्राप्त हो जाए तो ये समझ लो कि वीजा पासपोर्ट सब मिल गया, सीधा भगवान के धाम जाना, सीधा सब कुछ प्राप्त हो गया। उस आज्ञा भी यदि कोई चल दे उसकी सिद्धि सुनिश्चित है, मतलब चलने के बाद नहीं होगी, चलने पे हो गई सिद्धि, उसके चाहे कुएं में गिरे जाए कहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैसे अनित्यम असुखम लोका में, इसमें कुएं में गिरो या घर में रहो, बात तो ये सुख तो मिलना नहीं है। ये तो ना कुएं में गिर के जो बहुत बड़ा दुख मिल गया, घर में कम दुख मिल रहा है, दुख ही दुख है। गुरु आज्ञा यदि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति कल्याण हो जाता है, कृत कृत भयो में। जैसे एक बच्चा हो, बच्चे को हीरा दे दो, कोहिनूर हीरा दे दो, बच्चा क्या करेगा? दो साल का, चार साल का बच्चा हो, खेलेगा कंचे की तरह खेल रहे हैं, जैसे वो कोहिनूर को भी खेलेगा, इधर फेंकेगा, वो करेगा, उसको किसी को, उसे कोई बोले टॉफी ले लो और ये पत्थर दे दो, वो दे देगा, एक लेयर लेके दे देगा कोहिनूर। मैं एक लेयर हूं, मेरे को क्या करना है इस पत्थर का? तो जैसे कोहिनूर की पहचान उसको है जो कि मतलब कोहिनूर प्राप्त तो बच्चे को भी हो गया है पर उसको उसकी वैल्यू नहीं पता, उसको उसका महत्व नहीं पता। और अगर यही कोहिनूर किसी त्रिभुवन दास या और ज्वेलर को प्राप्त हो उसको पता है उसकी वैल्यू क्या है। उसी प्रकार से जीवन में गुरु प्राप्त हो जाना ये बच्चों को बात पूरी तरह नहीं समझ आएगी कि हमें क्या प्राप्त हो चुके हैं। साक्षात हरेस्त्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र, समस्त का मतलब है समस्त, सारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं, साक्षात हरि गुरु रूप में शिष्य को भगवत धाम ले जाने आते हैं। गुरु कृष्ण रूप होन शास्त्र प्रमाणे, कृष्ण रूपे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगण, कृष्ण ही गुरु रूप में कृपा करते हैं भक्तगणों के ऊपर। बंदो गुरु पद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, चाहे रामचरित मानस लें या चैतन्य चैतामृत लें या स्कंद लें पुराण लें कोई भी आचार्यों की वाणी लें, तो गुरु साक्षात हरि हैं। पर ऐसी बच्चे को हीरा प्राप्त हो भी गया उसको उसका महत्व समझ नहीं आएगा तो उस जो हीरे से प्राप्त हो सकता था उससे वो वंचित हो जाता है। उसी प्रकार से अश्रद्धान अश्रद्धा युक्त जो भक्तजन है जिनकी श्रद्धा इस तत्व में नहीं है तो उससे महरूम तो हो ही जाते हैं। और शिवजी बताते हैं कि गुरु तत्व अभिज्ञाय सर्व व्यर्थम भवेत प्रिय, दुर्गा जी को बता रहे हैं शिव जी, जिसे गुरु तत्व का ज्ञान नहीं है, जिसकी गुरु में साक्षात भगवत बुद्धि नहीं है, उसके व्यर्थ सब कुछ जप तप मनन धाम दान पुण्य सब व्यर्थ हो जाता है। भवेत प्रिय व्यर्थ भवेत प्रिय, ये सोचो कायो मनो वाक्यात गुरुर एव सेवनम कुर्यात, काय यानी शरीर मन वाक्य वाणी इससे निरंतर गुरु की सेवा कुर्या सेवा करनी चाहिए, ये शास्त्र आदेश देते हैं। पर ये बहुत मुश्किल कार्य है कि गुरु की सेवा करनी तो चाहिए पर गुरु को सेवा चाहिए नहीं किसी की, जिसको कभी कभार भी प्राप्त हो जाए वो अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति है, कभी भी प्राप्त हो जाए, जिसको चाहिए नहीं उन्हीं की सेवा करनी है। भावोत्सव न भजताम रस काम देना, भावोत्सव से भजन भी करता। अपने गुरुदेव के द्वारा जो बताई गई जो लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत यदि कोई रहता है उसके जितने भी भयंकर से भयंकर कष्ट भी आने हो उसे नहीं छू सकते, गांठ बांध लीजिए इस बात को। गुरु जी ने अगर कुछ बोल दिया है तो वो उस लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत है, बस उसको कष्ट नहीं छूएगा, क्योंकि गुरु जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी ना, फिर वहां प्रवेश नहीं है किसी का, चाहे वो कोई भी हो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी की हो। पर हां एकदम इसकी अचल निष्ठा गुरु निष्ठा होती है उसी को इस प्रकार का कवच प्राप्त होता है। और ये जो तत्व है इस संसार का तत्व, या आपको आप सोचिए हम कैसे रिचुअल की तरह पढ़ते होंगे, चाहे राधा रानी के बारे में अगर हम आपको कुछ बताएं तो जैसे हमने शायद काफी बार पढ़ा हो कि प्रातः लीला में श्यामला सखी राधा रानी के घर पे आई हैं और राधा रानी ने उनको आलिंगन किया और बैठने की जगह दी, तो इसमें किसी को कुछ हुआ? मैं अगली लाइन पढ़ रही, पैराग्राफ भी पूरा नहीं है, एक पैराग्राफ की एक लाइन है सिर्फ। पर जो रसज्ञ महापुरुष है वो पागल हो जाते हैं ये पंक्ति पढ़ के, श्यामला सखी आई राधा रानी ने आलिंगन किया उन्हें बैठने का स्थान दिया, ऐसा क्या उन्हें मिल गया इस पंक्ति के अंदर बताओ? ये रस शास्त्र रस का भंडार है, आनंद मिलेगा तो यहां से मिलेगा, क्या मिला उनको इस पंक्ति में, क्या मिला उनको? उनको इस पंक्ति में मिल गया मेरी स्वामिनी सुखी हो रही है, मेरी राधा रानी इतनी कष्ट पा रही थी कृष्ण के विरह में, श्यामला सखी आ गई, जैसे होता ना कि मरते के लिए लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी आ गई, वो जीवित हो जाएगा, मेरी स्वामिनी इतने कष्ट पा रही थी वो जय हो अमृत स्वरूपनी श्यामला आ गई, मेरी स्वामिनी अब इनको कुछ चैन मिलेगा, प्रिया प्रियतम की बातें होंगी अब इनको चैन में, और क्या किया, वार्मली एम्ब्रेस्ड, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सौहार्द से आलिंगन किया। तो आलिंगन वो श्यामला सखी कर रही है, श्यामला सखी तो सुख से प्रफुल्लित हो गई, जैसे कि बारिश होती है और खेत एकदम प्रफुल्ल एकदम खिल जाता है, उसी प्रकार से श्यामला सखी तो खिली ही खिली, हम उससे कई गुना ज्यादा खिल रहे। क्यों? मेरी स्वामी खुश होगी। ये है जैसे हम दुखाले को ऐसे रिचुअल से पढ़े, इसको भी ऐसे पढ़ लिया। देखिए लाइन तो मैं क्या लिखा आपको बताएं, श्यामला सखी सडनली अराइव, राधिका वार्मली एम्ब्रेस्ड हर एंड ऑफर्ड हर अ सीट, बस इतनी सी बात। और ऐसे एक जन पूरा पूरा दिन पूरा पूरा हफ्ते इसी के ऊपर जप करते रहते, पूरा उनको सिर्फ श्यामला सखी है, राधा रानी है, और वो उनको देख रही है। हफ्तों महीनों निकल गए, क्या हुआ है, श्यामला सखी केम सडनली शी एम वार्मली एम्ब्रेस्ड एंड ऑफर्ड हर अ सीट। हफ्तों महीनों निकले जा रहे हैं, वही पंक्ति खत्म नहीं हो, दिन रात वही चल रहा है, क्या श्यामला सखी सडनली केम राधा रानी वार्मली एम्ब्रेस्ड एंड ऑफर्ड हर अ सीट, बस कुछ नहीं हो। कोई हम कोई नॉवल थोड़ा पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, अरे आप इसमें देखो क्या क्या हो गया। रसिक जन को वहां रस मिलता है जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और रसिक जन जहां कल्पना नहीं कर सकते वहां हम रस की कोशिश कर रहे हैं। ये तब ये सब जो बातें हैं इसको समझने के लिए बुद्धि पवित्र होना अति आवश्यक है, और बुद्धि पवित्र होती है जब हम केवल भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। देखो जो आप भोजन खाते हो, जो आपका शरीर है ना, ये आपके भोजन खाने का परिणाम है, जो भोजन खाए उसी से ये शरीर बना है। यदि आप प्रसाद पा रहे हो तो आपके रोम रोम में श्री कृष्ण समा जाते हैं, प्रसाद और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो आपका रोम रोम भगवतमय हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, कृष्णमय राधिकामय हो जाता है। यदि प्रसाद एक एक कण एक एक नस एक एक खून का कतरा हड्डी मछली जो कुछ है वो सारा कृष्णमय हो जाता है, भगवानमय हो जाता है यदि आप प्रसाद पाते हो। यदि आप प्रसाद नहीं पाते, कुछ भी खा लेते हो, रेस्टोरेंट का कहीं तो मान हुआ प्याज भी खा लेते हैं महानुभावी, तो उससे क्या होता है, ये सब खाने से या बिना भोग लगाए खाने से सारा शरीर पाप से भर जाता है। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है, 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी बताया गया है, केवल प्रसाद पाना चाहिए भक्तों को। तो जब प्रसाद नहीं पाएंगे तो एक एक नस एक एक नाड़ी जो है वो पाप से भर जाएगी। तो जब पाप से भरी चीज वो भगवान का स्मरण कैसे कर सकती है, भगवान का नाम कैसे ले सकती है। अगर हमें यह समझ आ गया है कि संसार दुखों का संसार है, यह संसार जो दुखों का घर है, तो हम यही चेष्टा करें कि किसी भी क्षण हमारा भजन छूटे ना, पूरे दिन में कोई भी क्षण हमारा भजन छूटना नहीं चाहिए। हम हर वृत्ति से अपने प्राणों से अव्यावृत भजन करें, तेल धारावत, मतलब कोई ब्रेक ना आए हमारे भजन, हमारे स्मरण में समस्या क्या है, भगवान को भूलना, समाधान क्या है, भगवान को याद रखना, सरल बात है। तो भगवान को किसी भी क्षण हम भूले नहीं। जब हम कुछ पा रहे होते हैं, भोजन कह लो आप, प्रसाद, तो उसमें संभावना होती है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। कैसे संभावना होती है, संभावना कैसे होती है, क्योंकि यदि हम जीभ के स्वाद के चक्र में रहेंगे तो हम भगवान को भूल सकते हैं। तो प्रत्येक जो ग्रास है, प्रत्येक जो कवल है, उसको हमारे को बहुत ध्यानपूर्वक पाना चाहिए, हर ग्रास में लेते हुए, जल्दी जल्दी नहीं पाना किसी ने, हर ग्रास में राधा 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 या हरे कृष्ण 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 हरे, मुंह से नहीं बोल रहे, मुंह से पा रहे हो, निरंतर आपके माथे में हृदय में निरंतर महामंत्र चल रहा है, या निरंतर राधा 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 नाम चल रहा है। आप विश्वास करो, आप जैसे जैसे राधा नाम लेते रहोगे धीरे 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 धीरे, कई संतों को तो ये हाल हुआ कि माथे पे राधा परमानेंट लिखा हुआ आ गया, परमानेंट राधा लिखा हुआ, क्यों, निरंतर राधा 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 राधा, अगली त्योहार उठाया राधा 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 राधा। भजन नहीं छूटना चाहिए भोजन के समय, यह हमने श्लोक खुद भी पढ़ा था, ये भगवान राम के भक्तों के लिए भी, उनके भगवान राम के उपासकों में है कि हर गिराई पे हर ग्रास पे लेते हुए राम 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 राम। तो जो राम 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 करके लेते रहेंगे, या राधा 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 राधा, तो सारा शरीर एक एक कण जो शरीर का है वो परम पवित्र हो जाएगा, और उस सूक्ष्म बुद्धि से आप भजन करोगे। अन्न पवित्र और ये अन्न चिन्ह में हो जाएगा, प्रसाद पा रहे हो तो आपकी जीव क्या है, ये तो मैं नहीं खाता, टिंडा नहीं खाता, गुलाब जामुन खाता हूं, ये तुम्हारा भजन नहीं है, तुम राक्षसी हो, क्योंकि तुम्हारी भगवत तुम्हारी प्रसाद बुद्धि नहीं है अन्न के अंदर, तुम तो टिंडे और टमाटर ही देख रहे हो। सर्वांग भजना आपकी चित्त वृत्ति का, आपका चित्त वृत्ति का भगवान से जुड़ना ये भजन है, चित्त वृत्ति का भगवान से जुड़ना। प्रसाद के वक्त सबसे ज्यादा संभावना है कि चित्त वृत्ति स्वाद में चली जाएगी, तो स्वाद में नहीं जाना चाहिए, वापस लाओ नाम में लिखे हर। और पानी का भी जो एक एक घूट पी रहे हो, राधा 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 हर बार, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे को कितने साल हो गए हैं, हमने राधा कुंड का जल छोड़े कुछ नहीं पिया, कम से कम 10 साल तो हो गए। हम जो जल पीते हैं घर में वो राधा कुंड के जल को ही रिफिल करते रहते हैं, उसी को ही भरते रहते हैं बार 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 बार, और कोई जल ही नहीं पिया 10 साल से, जब से राधा कुंड से हम जुड़े हैं, सिर्फ वही जल। एक संत हैं, वो ओम 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 करते रहते हैं निरंतर, उनके शरीर में कितनी जगह ओम 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 लिखा हुआ हो चुका, अब हटता नहीं है, टैटू होता ना जैसे, वैसे ओम ओम हो चुका उनके शरीर में, कितनी जगह हटता नहीं है, राधा राधा माथे पे आ जाता है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, वो जहां जप करते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जो दीवारें थी जो ईंटें थी, ईंटें बोलती थी हरे कृष्ण, वहां व्यक्ति कोई भी नहीं जा रहा, मतलब गोरक्षो बाबा वहां पे उस समय नहीं है, कोई भी व्यक्ति वहां जा रहा है उसको हरे कृष्ण मांगकर ईंटों से सुनाई देता, तो जब ईंटों से सुनाई देता होगा तो शरीर से क्या सुनाई देता होगा। कितने संत ऐसे होते हैं उनके ऊपर स्टेथोस्कोप बोलते हुए डॉक्टर लगाते हैं, वो जो लगाते हैं उसको लगा के देखो अंदर से एक चीज सुनाई देगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अभ्यास होना चाहिए भजन का, और ये तब होगा जब संसार को दुखालय मानोगे और चेष्टा करनी बंद करोगे और निरंतर नाम लोगे। आप देखो ना भजन कहां कहां छूटता है, भोजन लेते समय छूट सकता है, जल पीते समय छूट सकता है, जल ले एक घूट भी नहीं जाएगा अंदर बिना एक तो भोग लगा होना चाहिए जल भी, और जो भी पिए राधा राधा या जो आपको हरे कृष्ण बोल गौरांग कुछ भी कुछ तो तीन में से कुछ बोल लो, गौर बोलो राधा बोलो हरे कृष्ण बोलो, अपनी तूती ना चले दिमाग की चल रही, मैं ये कर लू मैं वो कर लू मैं ये कर लू, इसको बंद करो, इसको साइलेंट मूवी कर दो। और जो अपने कुकिंग कर रहे हो घर में रसोई करते हो तो काटते काटते नहीं बोल सकते राधा राधा, ये नहीं कि उच्चारण नहीं बोल रहे हम, अंदर चले राधा निरंतर, आप कटिंग कर रहे हो राधा राधा चले, आपको क्या फर्क पड़ रहा है 5 किलो या 1 किलो, राधा राधा ही तो करना था, कुकिंग के बाद भी हो कुकिंग से पहले भी हो कुकिंग के दौरान भी राधा राधा राधा। कोई मोटे हो जाते हैं तो पतले होने के लिए व्यायाम करते हैं, चलने फिरने जाते हैं तो राधा राधा निरंतर ऊपर नीचे राधा राधा राधा, और जो पेट आगे पीछे करते हो तो वो भी राधा, या चलते फिरते हो तो वो भी राधा 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 नॉन स्टॉप होना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा यह शरीर ठीक हो जाएगा या जब मेरे घर में ठीक हो जाएगा तब मैं भजन करूंगा भक्ति का, वो दिन कभी नहीं आएगा, हम आपको बता दें वो दिन कभी नहीं आएगा। हमेशा याद रखो ये दुख ये जो आया है ना ये जाएगा या नहीं जाएगा वो तो पता नहीं, और नया आने वाला है, दुखाले है ना क्यों में लगे हुए हैं वो आते जाएंगे आते जाएंगे। जो मैं सुख को दुख को हटा के एक दिन फिर भजन करूंगी शांति से, वो दिन ना किसी के जीवन में कभी आया था ना आपके जीवन में आया, आ रहे और भी लाइन में लगे हुए हैं। आप ये सोचो कि पीस हो जाएगी संसार में, डोंट एक्सपेक्ट पीस, क्यों दुखाल लिया ना, इंडिविजुअली पीस एक्सपेक्ट करो ना, सोशली ना, फैमिली वाइज ना, इंटरनेशनली पीस कहीं नहीं होगी, फैमिली वाइज इंडिविजुअली सोशली इंटरनेशनली ऑलवेज एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये दुखाल है। हम सोचते हैं हट जाए क्योंकि मैं तो माला करता हूं, तो माला क्या, तुम पूरा दिन माला करो तब भी। हमारे को यहां तक अभ्यास करना चाहिए, ये जो आपको बताया भोजन के समय पानी के समय पीते समय भगवान नाम लेना है, क्या मुश्किल लगा? अभ्यास की जरूरत है। अगर कोई बोले ना ये थोड़ा मुश्किल है, एक बात बताओ, एक व्यक्ति है श्री कृष्ण और दूसरे हैं अर्जुन, उन्होंने हम अर्जुन को कहा माम अनुस्मर युद्धे च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, तो पानी पीते हो तो स्मरण कर ही सकते होंगे, भोजन खाते हो तो स्मरण कर सकते होंगे, जब आज्ञा है युद्ध के समय स्मरण करने की, तो भोजन और जल लेते तो बहुत आसान होगा कंपेरेटिवली, युद्ध से तो आसान होगा। अभ्यास योगे न युक्ते न चेतसा न अन्य गामिना, अध्याय 8 श्लोक 8। अभ्यास योग युक्त न, अभ्यास योग युक्त चेतसा न अन्य गामिना, चेतना अन्य और नहीं जाए, अभ्यास योग, अभ्यास करना होगा भोजन के समय लेने का, फिर आपसे आपका मुंह बंद नहीं होगा। फिर ये संसार में सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि हम भगवान से अलग होके इंजॉय करना चाहते हैं, और ये चक्र तब तक बंद नहीं होगा जब तक हमारे अंदर से ये भावना बंद नहीं होगी कि हम मेरे को भगवान को, भगवान से अलग मेरे को इंजॉय करना। हमने भगवान हमारे को दुख एक्चुअली में दे नहीं रहे हैं, दुख हम भगवान से मांग रहे हैं। कैसे हम मांग रहे हैं दुख? आपने भगवान से अलग होकर इंजॉय करने के लिए ये एक और जीवन मांगा, तो जीवन के साथ तो दुख मिलेगा ना। इस संसार में जो आपको जीवन मिला है दुख ही मिले, दुख आले में आए तो दुख तो दुख ही तो मिलेगा। अगर आप भगवान से अलग होकर एक क्षण भी रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो दुख ही चाहते हैं हम। अगर हम भक्ति समझ पाए तो जीवन यू टर्न लेना चाहिए, इतनी 80 की स्पीड से गाड़ी उस ओर जा रहे थे, एकदम रुका और पलटी मार ली, ये है भक्ति का जीवन। ये नहीं कि अभी भी वही चीजें हैं, वही घूमना, 17 की उम्र में भी वही घूमना खाना पीना, 27 की उम्र में भी वही घूमना खाना पीना इधर उधर, 37 की उम्र में भी वही, 47 की उम्र में भी वही, लाभ क्या हुआ जप का या तप का? ये जो मानव जीवन है ये एक ब्रिज के समान है, ब्रिज, ब्रिज माने पुल, पुल होता है इस ओर से उस ओर जाने के लिए, ना कि वहां पे अपना रैन बसेरा बसाने के लिए। आपको भाई वो है माने दिल्ली से वृंदावन की एक ब्रिज है, उसको कुछ NH कोई ब्रिज बोलते हैं उसका नाम कुछ, तो भाई इस ओर से उस ओर जाने के लिए है, ये थोड़ा ना कि वहीं पे बसा लो, वहां मैं तू मेरा पापा मैं तेरा बेटा और ये आओ पकौड़े खाएं, और इसके लिए नहीं है, वो पार होने के लिए था। तो संसार में ना हम संबंध बनाने के लिए, ना निभाने के लिए, ना भोगने के लिए आए, सिर्फ पार करने के लिए आए, फटाफट अपना काम पूरा करें। अगर ये दुखालय हमें समझ आ गया है तो हर क्षण हम केवल एक ही प्रयत्नशील, एक ही प्रयास करेंगे, कैसे यहां से बाहर निकलें, कैसे बस यहां से, मैं बस यहां से बाहर निकलूं। अब खुद मतलब हम अब खुद सोचो, क्या ये मीनिंगलेस लाइफ नहीं है कि एक व्यक्ति में अमुक मान के अपने आप को 50 साल 70 साल कार्य कर रहा हूं, एक क्षण खत्म और इट्स ऑल ओवर, वो आप कभी भी नहीं रहोगे, मीनिंगलेस नहीं है सब कुछ। कुंज बिहारी दास बाबा जी महाराज, उन्होंने भी पुस्तक में बताया, अन्य आचार्य भी बताते हैं कि ये संसार में रहने के समय भव कुपेर जीवेर गति, एक पुस्तक का नाम है, तो वो जो कुएं में एक जीव है वो सांप नीचे है और एक टूटी टहनी से वो अटका हुआ है, एक बूंद शहद के ऊपर से आने गिर रही है, उसके पीछे वो कर रहा मैं भोग के रहूंगा, यही संसार दुखाले ये है। दुखों से घिरे पड़ने सोचता हूं मैं त्रिवला सुख ले लूंगा, मैं घूम फिर आऊं, मैं बर्थडे मना लू, मॉल चला जाऊं, बस शूद्र सुख, और सुख भी नहीं है वास्तव में। ये दुखालय शासन तो जो है ये मोस्ट ओवरहर्ड टॉपिक है और मोस्ट अंडर फॉलोड टॉपिक है, और आज तो शिव जी की भी कृपा हुई कि उन्होंने भी बता दिया अपना ओपिनियन इस संसार के बारे में संकट आल। तो व्यास पूजा जो है ये केवल एक व्यक्ति की गुरु की नहीं होती है, ये पूरी गुरु परंपरा की होती है। तो जैसे बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति का मतलब है नया जीवन घटित होना, तो हम यही आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका नया जीवन घटित हो और अपना कल्याण करें। गौर प्रणाम।